गुजरता वक्त कुछ अनुभव देकर जाता है तो कुछ संकेत भी दे देता है, वहीं आने वाला वक्त अपने अंदर दफन कई राज लिए आता है। कल में कुछ संकेत छुपे होते हैं कल के लिए। उस राज को समझने की और उसके साथ चलने की क्षमता हमें कल का अनुभव ही देता है। यूं लगता है कि गया वक्त और आने वाला वक्त एक दूसरे से अनजान तो हैं, फिर भी उनकी कड़ी जुड़ी हुई होती है। तो आइए पहचानते हैं इस कड़ी को, कुछ सीखते हैं 2021 से और स्वागत करते हैं 2022 का, ऐसी शख्सियतों के साथ जो समय के भाव को भी निचोड़ कर रखते। चलिए समझते हैं बीते कल को और जानने की कोशिश करते हैं आने वाले कल को।
नमस्कार, मैं अजय आवारा चुभन के सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। समय कब हाथ से फिसल जाए इसका पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, देखते देखते 2021 निकल पड़ा है और आज 2022 दस्तक दे रहा है। समय तो निकल गया और आने वाला समय भी हमारे द्वार पे खड़ा है, लेकिन एक इंसान होने के नाते हमारे लिए कर्तव्य बन जाता है कि हमारा आज के कल आने वाले कल को संवारने के लिए हमें अतीत से कुछ सीखना चाहिए, कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे हम आने वाली पुरानी गलतियां दोबारा ना करें। 2021 में कुछ हमने खोया, कुछ पाया। आइए देखें, विचार करें, मंथन करें, एक राष्ट्र के तौर पर हिंदुस्तान ने क्या खोया क्या पाया और समाज के तौर पर हमने क्या खोया क्या पाया। इन सब बातों पर मंथन करने के लिए आज हमारे साथ दो विभूतियां जुड़ी हैं। एक हैं आदरणीय स्वर्ण ज्योति जी बेंगलुरु से, जो जानी माने साहित्यकार हैं, 13 भाषाओं की ज्ञाता हैं, 3 भाषाओं में, शायद मेरे ख्याल से 4 या 5 भाषाओं में लिखती हैं, अनुवाद भी करती हैं, और इनके लेखन की गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति उनमें डूबना चाहे तो समझ लो वो ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाने लग जाए। इसके साथ हमारे साथ आदरणीय जनार्दन पांडे प्रचंड जी जुड़े हुए हैं, जो ओज रस की एक सशक्त आवाज हैं। जब वो काव्य पाठ करते हैं तो मानो राष्ट्रवाद बोल बोल कर चीख उठता है। प्रचंड जी ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में ही जाने माने व्यक्तित्व हैं, बल्कि कनाडा में और अन्य देशों में भी उन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगाई है। हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद इनकी जुबान बोलता है और साहित्य का फलसफा स्वर्ण ज्योति जी की जुबान बोलता है। आइए देखें ये दो व्यक्तित्व हमारे 2021 के अनुभवों को किस तरह विवरण देते हैं, किस तरह व्यवस्थित करते हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगा, आदरणीय स्वर्ण ज्योति जी एवं जनार्दन पांडे जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए।
स्वर्ण ज्योति जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि हम पहले बात करते हैं हमने क्या पाया। तो स्वर्ण ज्योति जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपके अनुभव के आधार पर, कि 2021 में राष्ट्र के तौर पर हमने क्या पाया है?
अजय जी नमस्कार। नमस्कार, और प्रचंड जी आपको भी नमस्कार। अजय जी आपने बहुत ही बोलने में चलिए ठीक है, आपका बहुत आज हम इस वर्ष में क्या खोया क्या पाया इस बात की चर्चा करने। तो सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं। स्थिति देखी जाए तो हमने अपने आप को बहुत ऊंचा बना लिया है। हम आज विश्व में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, और दूसरी बात, हमने देश में कुछ ऐसी नई नई योजनाओं का प्रारंभ किया है जो अपने आप में बहुत ही महती है। जो हाल ही की बात करते हैं तो उसमें हम बनारस में जो श्रीमान प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने विजय कॉरिडोर का जो आरंभ किया, उद्घाटन किया, और उसके साथ ही साथ सरयू परियोजना का भी उद्घाटन इसी वर्ष हुआ
जी।
जो देश समस्त जनता को एक साथ जोड़ने में बहुत बड़ा काम किया हमने, और इस वर्ष स्थिति में हम इस कदर आगे बढ़े हैं कि हम यदि अपने रक्षा बल को देखें, सैनिक शक्ति को देखें, तो उसमें हमने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मैं इस बात से यहाँ पे मैं जनार्दन जी से भी पूछना चाहूंगी कि आप रक्षा क्षेत्र में जो हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इससे आप कितना सहमत हैं?
जी सभी को मेरा नमस्कार, और अजय जी, भावना जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। तो जैसा कि स्वर्ण ज्योति जी ने कहा, मैं उनसे पूर्ण सहमत हूँ कि रक्षा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं। देखिए, भारत मूल रूप से एक इम्पोर्टर था रक्षा साज सामानों का, और पिछले 75 वर्षों में कभी इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया नहीं गया कि हम उसके एक्सपोर्टर बने, उसके निर्माता बने। तो ये वर्ष मैं देखूंगा कि हालांकि कार्य पिछले वर्ष ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन उन परियोजनाओं का बड़े बृहद स्तर पर विस्तार हुआ और देश के कई क्षेत्रों में ऐसे कारखाने, और विशेष रूप से मैं देखता हूँ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऐसे कारखानों का निर्माण काफी प्रगति पर है। और चूंकि मैं तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस पटल पर नहीं भी कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जिनका भी इंटरेस्ट है इसमें निवेश करने के लिए इस क्षेत्र में, और वो पूरी पूरी तरह से अपनी नजर जमाए हुई है। तो रक्षा के क्षेत्र में जरूर मुझे लगता है कि जो ये वर्ष गया है 2021, ये मील का पत्थर साबित होगा जब आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भारत उस स्थिति में होगा कि अपनी आवश्यकताओं के सभी रक्षा उपकरण भारत स्वयं तैयार कर रहा होगा और अन्य देशों को निर्यात भी कर रहा होगा, तो वहां पर जब 2021 को देखा जाएगा तो अवश्य मील का पत्थर साबित होगा। और रक्षा की ही बात की जाए, अन्य भी तकनीकी क्षेत्र हैं, जैसे भी कुछ पहले ही सरकार ने 76,000 करोड़ का पैकेज लाया है सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, चिप इंडस्ट्री के लिए।
जी जी जी,
बड़े दिनों से ये चर्चाएं होती थी कि भारत इतना बड़ा इंपोर्टर है, आयातक है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का, इलेक्ट्रॉनिक साज सामानों का, और अब तो आज मतलब ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है अभी देखिए वेब के माध्यम से ही हो रहा है
जी जी जी,
तो इस कार्यक्रम की के आयोजन में आप देखिए तो कितने स्मार्टफोन और बीच में कितने नेटवर्कों का सब सहयोग है तब जाकर के हो पा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये था अब तक कि हम लोग इन चीजों का अभी भी इंपोर्ट करते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा होने के नाते कि डिजाइन के क्षेत्र में भारत बहुत आगे है।
अच्छा,
तो
अच्छा।
जो जो भी स्मार्टफोन हम सबके हाथ में होंगे, मुझे लगता है कि उसमें से कम 2/3 जो डिजाइन है वो भारत में हो रही होगी। लेकिन दुर्भाग्य अच्छा, देखिए अच्छा। कि कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि उसका हम निर्माण खुद यहाँ पे करें, मैन्युफैक्चरिंग खुद करें। तो जो अभी बिल्कुल साल के जाते जाते जो एक पैकेज आया है वो बहुत बड़ा है। और देखिए एक बात और मैं इस पटल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो सेमीकंडक्टर है वो आने वाले समय में आयल होने वाला है। जैसे सारी दुनिया की नजर तेल की ओर होती थी, वैसे सारी दुनिया की नजर अब सेमीकंडक्टर की ओर जाने वाली है। कारण उसका ये है कि सभी कारों का, मुझे भी विराम दीजिएगा जब आपको लगे कि आपको विषय को आगे बढ़ाना है तो
नहीं नहीं आप बोलिए आप बोलिए।
जी जी, तो जैसे आज तक ये था कि जिसके पास तेल है उसके पास पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसके हाथों में, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा, और अगर तेल नहीं है तो फिर चक्का जाम हो जाता था, सारी अर्थव्यवस्थाएं रुक जाती थी। लेकिन अब ये वर्ष गया है पूरी दुनिया में, उसमें बड़ी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है कुछ देशों को, अमेरिका में और यूरोप के कुछ देशों में, जहां पे बहुत इफिशियंट इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं रोड पर, और भारत में भी वो चीज देखी जा रही है, कई सारी अच्छी कारें आ गई हैं जो काफी दूरी को जो है तय कर सकती हैं। तो अभी ये जो सभी कारें हैं जो भी इलेक्ट्रिक कारें हैं, इनका जो मूल है वो जो है चिपों में है, सेमी कनेक्टर में है। तो जिसके पास तो टेक्नोलॉजी होगी, वो जैसे अब तक जिसके पास तेल होता था वो दुनिया पे राज करता था, दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था, वैसे ही जिनके पास ये टेक्नोलॉजियां होंगी वो जो है नियंत्रित करेगा। तो बड़ा बड़ी दूरदर्शी सोच रही है सरकार की इस पैकेज को लाने में, और मैं बहुत एक तकनीकी विशेषज्ञ होने के नाते भी और साथ साथ साहित्यकार होने के नाते भी मैं सरकार के इस कदम का बहुत स्वागत करता
जी
हूँ।
हाँ, मैं एक्चुअली मैं बताऊँ, जैसे मेरा विचार है कि जैसे बात की हमने रक्षा क्षेत्र की, तो मुझे संज्ञान है, मुझे पता है कि कुछ ऐसी सूचना आई थी कि कई देशों ने हमारे तेजस जो फाइटर क्राफ्ट है उसको खरीदने में रुचि दिखाई है। तो जिसे कहते हैं कि हम निर्यातक बनने जा रहे हैं, ये उस ओर एक बढ़ता कदम है। और जहां तक मुझे पता है कि मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में अब हम ऑलरेडी निर्यातक हो चुके हैं, अगर
हाँ,
मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो।
और उसमें अजय जी थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा, उसमें हो क्या रहा है कि कुछ एक विदेशी कंपनियों ने अपना फैक्ट्री सेटअप डाला हुआ है जो असेंबली कर रहे हैं, लेकिन जो जो चिप बनती है, जो उसकी फैब होती है, दुर्भाग्य से उस क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। और अब अभी तक क्या है कि भारत के पास सिर्फ एक फैब है, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड मोहाली में, जो कि बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी वाली है, तो जो मतलब आज की आवश्यकताओं को किसी भी समय पूरी नहीं कर सकती है, जो मतलब बहुत ही जो पुराने उपकरण थे उनका वहां पे निर्माण हो सकता है। तो अब ये जो 76,000 करोड़ का जो पैकेज आया है, इसका जब असर दिखेगा आने वाले 4-5 सालों में, और उसके द्वारा जो बहुत सारे रोजगारों का सृजन होगा, तो वो पूरी जो है पूरी अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व बल देगा। जैसे मैंने पहले कहा कि भारत में इस समय करीबन एक आंकड़े के हिसाब से 24 से 26 हजार डिजाइनर है भारत में, वो एक बहुत बड़ी संख्या है। मतलब अमेरिका को छोड़ के विश्व में किसी और देश के पास वो ब्रेन पावर नहीं है इस क्षेत्र
जी
में,
जी जी
लेकिन 24,000 से लेकर 26,000 के डिजाइनर्स का, लेकिन बस दुर्भाग्य था कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे, तो जो पूरा एक वातावरण बनता है, जो इकोसिस्टम बनता है, वो नहीं बन पाया था। अब ये पैकेज जो आ गया है, तो उससे उस दिशा में जो है कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
तो अब हम इस कगार पर आ चुके हैं कि हम चिप और सेमीकंडक्टर का भी निर्यात कर सके।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम डिजाइनों का तो निर्यात करते ही रहे हैं, लेकिन जब ये जो कार्य जो आया है, जब ये हो जाएगा तो हम
तो हमारे निर्भरता भी कम हो जाएगी, हमारा का सारे भी तेज हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो जब सेमीकंडक्टर जब हिंदुस्तान में बनेंगे तो शायद मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ज्यादा फिर उन्नत हो जाएगी।
हाँ बिल्कुल, मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेके हर एक क्षेत्र में उसका असर दिखेगा। और मैं एक बात और इस पटल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस समय हो क्या रहा है कि अधिकांश सेमीकंडक्टर चीजों का निर्माण ताइवान में हो रहा है,
जी जी
जो जो मुख्य केंद्र है, अमेरिका के पास भी नहीं है वो टेक्नोलॉजी, और सभी को ये समझ में आ रहा है कि ताइवान पे खतरा है।
जी जी जी
जैसा मैंने पहले कहा था कि ये भविष्य का तेल बनने जा रहा है, तो इसलिए हर हर एक राष्ट्र इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, और ये बड़ा अच्छा कदम है सरकार का। मुझे लगता है सोना जी कुछ इसमें जोड़ना चाह रही थी, जी कुछ कहना चाहेंगी आप?
मैं रक्षा क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि हमारी रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को भारत की सबसे पावरफुल महिला का खिताब दिया गया है।
हाँ जी, ये अचीवमेंट हमारे लिए एक
बहुत बड़ा अचीवमेंट।
तो एक तरह से हम कहा जाए कि हम एक सशक्त आर्थिक विकास के साथ साथ सशक्त सेना बल की भी सेना बल भी हमारे पास मौजूद है, जो हमारे लिए एक बहुत ही मील का पत्थर है।
और नारी सशक्तिकरण का भी अच्छा उदाहरण है।
जी, नारी सशक्तिकरण का भी बहुत अच्छा उदाहरण है।
तो निर्मला सीतारमण जी ने साबित कर दिया कि नारी ने हिंदुस्तान को आर्थिक व्यवस्था पर भी आगे लेके गई है नारी होकर, और रक्षा मंत्री रही तब रक्षा उपकरणों में भी उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया।
आप अजय जी नारियों के बातें बातें मत आरंभ कर दीजिए, वरना कार्यक्रम कुछ और ही हो जाएगा।
नहीं, हम तो कहते हैं कार्यक्रम में खुशबूदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अच्छा चलिए, मैं इसी विषय पर कुछ और बताते हैं। जहां नारी सशक्तिकरण का जब हम बात कर रहे हैं कि निर्मला सीतारमण को हमने पावरफुल महिला का खिताब दिया है, तो हम सबसे खूबसूरत महिलाएं भी हमारी भारत की ही होती है।
हाँ, इस साल हमने मिस यूनिवर्स का खिताब भी पाया है। 21 साल के बाद
हरनाज संधू को इस साल विश्व सुंदरी का खिताब मिला, ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पर हमने एक बात और मैं बताना चाहूंगी जो शायद बहुत कम चर्चा में आई है, मीडिया ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, जो बड़े खेद की बात है कि हमारी कोलकाता की एक महिला है, उनका नाम है नीना गुप्ता, जिन्हें गणित के रामानुजम अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अच्छा,
और ये हमारे भारत की पहली महिला है जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो
अच्छा,
ये तो एक खेद की बात है कि हम इस बारे में बहुत चर्चा हमने नहीं की, पर इसके बावजूद भी गणित सशक्तिकरण, गणित और सेना बल और सुंदरी सब जगह हमने अपनी पताका फहरा दी है नारियों ने, सोच लीजिए।
नहीं, हम तो कहते हैं देवी पूजन में भी विश्वास करते हैं, इसीलिए आपके पूजन
बिल्कुल
नारियों के।
बिल्कुल बिल्कुल
हम तो बोल ही नहीं पाते। देखिए भावना जी चुपचाप बैठी है, लेकिन हम सुन रहे हैं आपको।
नारी सबसे भारी,
नारी सबसे भारी। देखिए आप अकेले भारी पड़ रहे हैं दोनों पर।
नहीं सर, पूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, उचित सम्मान मिलना चाहिए, पूजा की जरूरत नहीं है।
नहीं, पूजन तो हम शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। जब शक्ति की पूजा करते
हैं, पूजा आप लोगों को पूजा इसलिए करते हैं कि हमें शक्ति प्राप्त। अच्छा, इसमें एक बात और है, हमने ये बात आपने सही कही कि जो हमने रामानुजन पुरस्कार उनको दिया गया, ये हमने मिस कर दिया। ये हमारी दोष हमारा थोड़ा मीडिया का भी है, जो ऐसी ऐसी समाचारों को दबा देता है और ग्लैमर न्यूज को ही आगे लेकर आता है।
जी, ये हमारी दो ये थोड़ी सी खामी हमारी मीडिया में जरूर है। अब सभी जगह कुछ ना कुछ खामियां ना कुछ विशेषताएं होती हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
एक और विषय है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं एक हिंदुस्तानी के तौर पर। हमने कोविड वैक्सीनेशन, जो कोविड टीकाकरण जो हुआ है, मेरे विचार से जैसे बताया गया है कि इतना तीव्र टीकाकरण किसी भी देश में नहीं हुआ और इतना अधिक मात्रा में टीकाकरण किसी देश में नहीं हुआ, और हमने शायद 2 करोड़ टीके एक दिन में लगाने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। तो इस बारे में अगर आप कुछ ना कहना चाहेंगे।
बिल्कुल अजय जी, बहुत बड़ी सफलता है। जितनी बहुत से देशों की जनसंख्या नहीं है, उतने लोगों को हमने प्रतिदिन टीका लगाया है, तो निश्चित रूप से मतलब एक इतनी इतनी बड़ी सफलता है। और उससे भी ज्यादा आप देखिए कि जब कोरोना महामारी आई तो पूरी विश्व की निगाहें जो भी विकसित राष्ट्र हैं उनकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी कि भैया कोई वैक्सीन अमेरिका से निकलेगी, कोई वैक्सीन यूरोप से निकलेगी। लेकिन आप देखिए कि हमें मतलब लोहा मानना पड़ेगा अपने वैज्ञानिकों का और अपने जो भी स्वास्थ्य कर्मियों का कि उन्होंने इस वैक्सीन को समय से पहले अन्य देशों से पहले इसको विकसित किया, और सिर्फ विकसित ही नहीं किया, उतनी मात्रा में इसको डेवलप भी किया, जो बहुत बड़ी बात थी कि उसको डेवलप करना, उसको प्रक्योर करना, उसको पहुंचाना घर घर तक, वो बड़ा कार्य था। तो निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता का विषय है।
और आज भारत अग्रणी देश हो गया है, कहते हैं गरीब देशों को और छोटे देशों को वैक्सीन देने वाला।
और इस कड़ी में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 से 18 साल वालों के लिए भी टीकाकरण का ऐलान कर दिया है, जो शायद पहली दफा हमारे देश में सबसे पहले हमने ये काम किया है। बाकी विश्व में तो ऐसा मैंने अभी तक नहीं सुना कि 15 से 18 साल वालों
नहीं, नहीं, और देशों में हो चुका है, कई देशों में चल रहा है, लेकिन हमारी मतलब उपलब्धियां ये बात है कि हमने विदेशी वैक्सीन यूज इस्तेमाल नहीं करी और भारत जो है अग्रणी देश बना है गरीब देशों को वैक्सीन देने वाला। जितने भी अमीर देश है, अमेरिका लगा लीजिए या रशिया लगा लीजिए, वो अपने पब्लिक के लिए कर रहे हैं और बेच और गरीब देशों को बेचने के लिए देने के लिए बहुत सी नियम व शर्तें लगा रहे हैं, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसने गरीब देशों को, अफ्रीकी देशों को बगैर नियम शर्त के उन्होंने वैक्सीन दिए है, और जितना कोटा हमने दिया है शायद किसी और देश उसको अचीव नहीं कर पाया है, जहां तक मुझे मेरी मेरी सूचना जाती है। आप लोग शायद इस बात से सहमत होंगे।
अजय जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कितनी हमने राजकीय मुद्रा बचाई है। अगर ये टीका नहीं बन पाता भारत में, हमें इसका आयात करना पड़ता, तो आप देखिए कि अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई।
हमने हमारे कहते हैं फॉरेन करेंसी हमारी जाती और हमने अब बाहर भेजा तो हमें बल्कि कहते हैं विदेशी मुद्रा मिली है अब और बचाई भी है। और इसके अलावा दूसरी एक बात और, जब हम भारत अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो कितना टाइम लगता, कितना समय लग जाता है इस बात के लिए। टीका मिलता नहीं मिलता ये भी एक बात है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ये लगा लीजिए वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्यकर्मी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। और सबसे बड़ा मार्गदर्शन हमारी सरकार का है। सरकार ने समय रहते इसको इस तरह से वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया कि टीका बना सके और हम इसको आगे बढ़ा सके। तो सरकार का मार्गदर्शन भी बहुत बहुत ही आवश्यक चीज होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सरकार ने इस तरह के कैंपेन चलाए, इस तरह के मतलब प्रोग्राम चलाए कि लोग भी जागरूक हों, लोगों को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो कई लोगों में कई तरह की भ्रांतियां थी, और ये अच्छी बात है कि कुछ महीनों में ही वो भ्रांतियां दूर हो गई, और आज हालत यह है कि कई राज्यों में तो हमें हमारे 100% टीकाकरण हो चुका है।
बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है।
और इसी इसी कड़ी में एक बात और भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अभी जो तीसरा वायरस नया ओमिक्रॉन आ रहा है, इसके जो फैलाव के कारण बताए जा रहे थे और इसकी जो फैलाव की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी, उसको भी हमने मेरे ख्याल से हमने बहुत हद तक रोका हुआ है। तो
हाँ, क्योंकि टीकाकरण हो गया तो उससे फैलाव कम हो रहा है थोड़ा सा,
तो उससे प्रभाव भी कम हो रहा है। और हाँ, मानती हूँ कि ये फैल रहा है और शायद बहुत तेजी से फैलता है, इसका गुण ऐसा है, पर ये तो इतना विश्वास है कि हम इस पे भी काबू पा लेंगे।
मैं कहना चाहता कि राष्ट्र के रूप में हमने अपनी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ा ली है, सबसे बड़ी सफलता।
ये 2 साल में हमने हिंदुस्तान को उस जगह खड़ा कर दिया जहां से हम ये मान सकते हैं कि हम अब दुनिया के मार्गदर्शक बन चुके हैं कई विषयों पर। और इस साल एक बार खास रहा कि ओलंपिक में शायद हिंदुस्तान ने इतने पदक कभी नहीं जीते जितने इस बार जीते हैं। इस बार ओलंपिक में हिंदुस्तान का बहुत बोलबाला रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए मेरे विचार से।
ओलंपिक में ही नहीं केवल हमने पदक जीते हैं, हमने पैरा ओलंपिक्स में भी पदक जीते हैं, करीब करीब 41 पदक हमने पैरा ओलंपिक्स में जीते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। और खेल के जगत में बहुत बहुत बदलाव आया है। सबसे लोकप्रिय खेल जो जिसे सारी दुनिया में पसंद किया जाता है, भारत में भी, क्रिकेट में भी हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है और बहुत बदलाव आए हैं। तो खेल के क्षेत्र में भी हमारा नाम अभी लिया जाने लगा है, ये तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि ओलंपिक में जैसे आपने अजय जी ने कहा कि ओलंपिक में हमने मेडल जीते और सबसे पहला मेडल स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जो हमें दिलाया, बहुत गर्व की बात है ये तो, और उससे हमारा नाम भी बहुत ऊंचा हुआ। सही बात है, जब झंडा लहराता है ना तिरंगा, तो आंखें भर आती हैं और खुशी से जी झूम उठते हैं।
ये अच्छी बात है कि हम इतनी सारी सकारात्मक बातें लेकर 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। अब एक बात, एक एक हर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसका एक पहलू अच्छा हुआ, सकारात्मक इतने हमारे पास गुण हैं कि हम उनके साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बीते समय की गलतियों से कुछ सीख ना पाए तो वो भी एक एक तरह से गलती होती, त्रुटि रहती है। तो हमारे लिए ये भी विशेष हो जाता है कि हमने जो 2022 में खोया है, 2021 में जो गलतियां हमने की हैं उनसे हम सीखें, उनसे कुछ पाठ लें और 2022 में प्रवेश करें। तो जनार्दन सर, आपका क्या कहना है कि हमने ऐसा क्या किया 2022 में कि उससे हम कुछ सीख लें और उसको एक प्रेरणा बनाते हुए 2022 में प्रवेश करें?
बिल्कुल बिल्कुल, इससे आने से पहले एक महत्वपूर्ण बात छूटी जा रही थी, जिस तरह से हमारे शेयर मार्केट ने उछाल मारी है
जी,
और
जी,
जो लोग है सब मालामाल हुए हैं, जो लोग भी रहे हैं शेयर मार्केट में, तो वो एक बहुत बड़ी सफलता है। तो सबको मैं
इस बारे में मुझे भी ये पता चला है कि 2021 का जो वर्ष सबके लिए मुश्किल होते हुए भी हमारी इकोनॉमी सबसे तेज गति से बढ़ी है।
हाँ, जो भी इन्वेस्टर थे उन लोगों को, बहुतों को जो है बहुत अच्छा अच्छा रिटर्न मिला है, तो सबको मैं ऐसी कामना करता हूँ इस वर्ष की।
और शायद हमारे कुछ बाहर के इन्वेस्टर भी अब हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, शायद ये सच ही है।
हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल सही बात। जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो सारा विश्व जो है टकटकी लगा के देखता है कि यहाँ हम इन्वेस्ट करें। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, बड़ी बड़ी तेजी के साथ रोड का निर्माण हुआ, अब बेंगलोर में ही देख रहे हैं मेट्रो का निर्माण, वो भी एक बड़ी सफलता कही जाएगी अगर हम लोग लोकल रूप से बात करें तो
जी।
तो लेकिन मुझे लगता है कि कार्यक्रम के समय को देखते हुए जो आपने पक्ष उठाया कि क्या खोया वाला है, हमें उधर थोड़ा सा जाना चाहिए। पाया पे तो काफी चर्चा हो गई, और देखिए जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो हमने खोई है वो मानव संवेदना, और एक साहित्यकार होने के नाते ये बात बहुत कचुटती है कि जब पूरा देश कोरोना की विभीषिका में जल रहा था तब मानव का इतना बुरा चेहरा, बिल्कुल कालीमा लगा हुआ चेहरा वो सामने आया कि लोग रेमडेसिविर की सुई को, उसके इंजेक्शन को पानी भर के बेच रहे थे, तरह तरह की कालाबाजारी हो रही थी, वो कल्पनीय था। ऑक्सीजन के सिलेंडर का जो अकाल पड़ा वहां पे, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मानव संवेदना वहां पे भी हमको कमजोर दिखी, कलंकित हुई, बिल्कुल मानवता पूरी कलंकित हुई वहां पे। तमाम ऐसी ऐसी ऐसे समाचार आए, ऐसी खबरें आई कि लोगों ने जिनके पास पैसे हैं हॉस्पिटल में एक बेड लंबे समय के लिए बुक कर लिया है उसको,
और बाद में नई जरूरत पड़ी तो उसे बेचा भी गया।
हाँ, उसको महंगे दाम पर बेचा भी गया। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी हुई, तो एक मानव का घिनौना पक्ष बड़ा सामने आया।
और साथ में ये भी हुआ ना कि जब कोविड की लोगों के लिए जब सहायता सामग्री इकट्ठी की जा रही थी तो उसे भी दबा के रखा गया और फिर उसे भी बेचा गया, और बिना कोविड की सहायता के नाम पे भी सामग्री इकट्ठी की गई और बाहर बेचा गया। तो जितना जहां जहां कुछ कुछ कर सकते थे लोगों ने इतना किया, ये बहुत ही दुख की बात है। जैसे आपने कहा कि मानव संवेदना सही में कलंकित हुई।
इसमें एक बात और हुई, मैंने देखा है कि मैंने देखा कि कई लोगों ने क्या करा कि जिनको कोरोना हुआ उनको सिलेंडर चाहिए, वो ब्लैक में खरीद रहे हैं, कालाबाजारी से खरीद रहे हैं, वो तो एक संवेदना वाली बात है। लोगों ने क्या करा है, जिनके पास कोरोना हुआ है, लोगों ने बस कोरोना ना हो जाए, हो ना हो जाए, इस चक्कर में उन्होंने पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर और बाकी उपकरण लेकर घर में इकट्ठे कर लिए, जबकि किसी को कोविड हुआ ही नहीं था। तो ऐसे बहुत उदाहरण मिले जो मतलब बगैर बगैर जरूरत के, बगैर उसकी आवश्यकता के लोगों ने खरीद रख लिए, वो भी एक बड़ा कारण बना उसकी शॉर्टेज होने के लिए, कमी पड़ने के लिए। मानव संवेदना मतलब ये समझ लीजिए कि हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमें आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी हमने खरीद लिया, और इस तरह से हमने पता नहीं कितने लोगों को हक मार लिया होगा।
अच्छा, और यहाँ पे एक बात जो सीख वाली है अजय जी, जैसे कहते हैं ना कि भूतपूर्व की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, हमें भविष्य को संवारना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो हमेशा से जर्जर थी और ये हम जानते थे, लेकिन इस महामारी ने उसको बिल्कुल एक्सपोज करके बिल्कुल हमारे सामने लाकर रख दिया, हमको दिखा दिया। तो अभी एक बहुत बड़ी सीख है सरकारों के लिए और समाज के लिए भी कि ऐसे जब ऐसी विभीषिका आती है स्वास्थ्य के संबंधित, तो उस समय जो प्राइवेट सेक्टर है वो उतनी इफिशियंटली काम नहीं कर सकता है। तो हमें एक ये सीख लेनी चाहिए कि हमें जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं और मजबूती प्रदान करनी है और उसको और चुस्त दुरुस्त करना है।
जी,
लेकिन लेकिन इस सीख का फायदा हुआ जो जैसा प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले बताया कि ओमिक्रॉन के खतरे पर उन्होंने जैसे बताया कि 19 लाख ऑक्सीजन बेड तैयार है ऑलरेडी, तो शायद सरकार ने राज्य सरकार
अजय जी शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आपकी आवाज कर हाँ।
शायद अजय जी शायद लाइन पर नहीं है क्या? तो मुझे लगता है कि तो अजय जी आप आ गए क्या? मुझे लगता है कि अजय जी का नेटवर्क शायद थोड़ा गड़बड़ हो। हाँ, तो हो सकता है अजय जी का नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो। तो स्वर्णज्योति जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में, इस वार्ता को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
जी जी जी, मैं इस विषय में यही बात कहना चाहूंगी, जहां हमने मानव संवेदनाओं को बहुत खोई है उसके साथ साथ हमने बहुतों की जीवित हमने बहुत एक तरफ आर्थिक उन्नति है तो देखा जाए तो दूसरी तरफ आर्थिक हुई है, बहुतों ने अपनी जीविका खोई, अपने काम काज खोए और पलायन करना पड़ा हमें, और पलायन करने के बाद जब स्थिति सही हो गई तब भी वो उबर नहीं पाए। इसके लिए हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा सरकारों के लिए कि हम किस तरह इसको उबरने का, हालांकि वापस आने के बाद उन्हें अपने काम पे रखा भी गया पर कई जगह काम से निकाल भी दिया गया। हेलो, शायद मैं भी
बहुत बहुत संवेदनशील पक्ष नहीं, आप बिल्कुल लाइन है, लाइन पे है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ और अजय जी भी वापस आ गए हैं।
हाँ जी, हाँ जी।
बहुत हाँ, बहुत ही संवेदनशील पक्ष उठाया आपने और मैंने भी ये बड़ा करीब बहुत ही करीब से महसूस किया कि बहुतों की जीविकाएं चली गई। मतलब एक तरह जो हम बात कर रहे हैं कि सेंसेक्स ने उछाल मारी और बहुतों को 100% का रिटर्न मिला, तो ये भी बहुतों का जो है 100% खत्म भी हो गया। विशेष तौर से जो लोग पर्यटन से जुड़े थे या मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इस तरह की जो भी इंडस्ट्रीज थी, तो वहां पे बड़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। और मुझे लगता है कि वहां पे सरकारों की भी संवेदना कहीं न कहीं कमजोर पड़ गई। अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज लाए गए, इससे मैंने बड़ा महसूस किया कि जो हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने लोन पे लेकर के तुरंत तुरंत गाड़ी जो है काम चालू किया था एक साल दो साल पहले, और उनका जब काम ठप हो गया तो उनके ऊपर बैंकों से धमकी आने लगी, तो उनके लिए इस पूरे समय से निकलना और इस पूरी आर्थिक संकट से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो गया। तो वहां पे उनके लिए कुछ एक अलग से पैकेज लाया जा सकता था, शायद उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, सरकारों का ध्यान नहीं गया।
हाँ, सरकार ने उद्योगों के लिए पैकेज लेकर आए थे शायद 12 लाख करोड़ का, लेकिन टैक्सी ड्राइवरों के लिए, निम्न स्तर के कारोबारियों के लिए कुछ नहीं किया गया, ये एक सोचने वाला विषय है।
हाँ, तो
इसे बहुत से लोग, मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जहाँ टैक्सी ड्राइवर जैसे लोगों के लिए कोई हमारे तरफ से योजना नहीं थी, वहीं जो लोग थिएटर से जुड़े थे, रंगकर्मी जो थे, उन्हें भी पड़ा। एक तो पर्यटन पूरा बंद हो गया जिसके कारण उनके थिएटर्स बंद हो गए, और थिएटर्स बंद होने के बाद उनके पास कोई भी काम नहीं रह गया। ये एक जो बात मैं कह रही हूँ, मेरे एक उपभोगी मित्र हैं, उनकी ही व्यथा है मैं जो अपने इस पटल के माध्यम से कह रही हूँ, कि उन्होंने, वो बहुत अच्छा थिएटर चलाते थे, परंतु उसके बाद अभी तक वो उबर नहीं पाए हैं, उसके लिए कोई योजना वो नहीं सोच पाए हैं, और कहीं उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें सरकार से कोई भी किसी तरह की मदद मिली है। प्रकाशन के क्षेत्र में भी ले लीजिए, ऐसा नहीं हो पाया। साहित्यकार तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है।
बिल्कुल
कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी।
मैं वही कहने वाला था कि खुद को क्यों भूल जा रही है तुम, जो
नहीं
हमें अपना पक्ष भी रखना ही चाहिए। बिल्कुल तो साहित्यकारों का उनके लिए बड़ा कठिन समय रहा, और विशेष तौर से जो कविता से जुड़े हुए लोग थे, जो कवि सम्मेलन से जुड़े हुए लोग थे, इसे मैं बहुतों को जानता हूँ कि जिनकी पूरी जीविका कवि सम्मेलनों पर निर्भर थी, उनके लिए निश्चित रूप से बड़ा कठिन दौर रहा है।
लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी हुआ, माना कि कवि सम्मेलन नहीं हो पाए थे, गोष्ठियां नहीं हो पाई थी, कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी, लेकिन वर्चुअल इसने एक नया आयाम जरूर दिया। जैसे वर्चुअल माध्यम से जो गोष्ठियां होने लगी, जो कार्यक्रम होने लगे, जो मीटिंग्स होने लगी, कंपनियों की मीटिंग्स होने लगी वर्चुअल माध्यम से, तो एक नया आयाम भी मिला है हमें इसके साथ साथ। अगर हमने कुछ खोया तो हमने कुछ इसके एक नए रूप में पाया भी है इसको।
हाँ, ये बहुत ही सकारात्मक पक्ष है। और अजय जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, मेरा तो मानना यह है कि अभी जो माध्यम हमने पाया है इसमें, और हमने समझा है कि माध्यम कार्य भी कर सकता है, मुझे लगता है कि आगे चलकर भी ये मिक्स अप्रोच चलेगी। जब धरातल पर कार्यक्रम होने लगेंगे, कब सम्मेलन होने लगेंगे, तो लोग फिर भी फेसबुक लाइव या स्ट्रीम यार्ड से या यूट्यूब लाइव वो करेंगे, और ताकि जो है दर्शकों की संख्या,
उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे कि पहले अगर कोई अंतरराष्ट्रीय अगर कोई सम्मेलन करना चाहे तो जाना आना इतना आसान नहीं होता था, वीसा पासपोर्ट और खर्चा सब होता था, लेकिन इस कोरोना के काल में ही ये चीज का एक्सप्लोर हुआ है, ये चीज एस्टेब्लिश हुई है कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियां कहते हैं वर्चुअल हो जाती है, और कहते हैं आदमी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ जाता है।
जी जी जी, तो मैं मतलब 2022 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये और बड़ा रूप धारण करेगा और अपने नए अवतार में आएगा, और शायद ऐसा संभव होगा कि हम कहीं किसी हाल में बैठ के कवि सम्मेलन कर रहे होंगे, और कुछ हमारे साथी कवि मित्र जो है कहीं और से, हो सकता है किसी अन्य देश से या किसी और प्रदेश से जुड़े है ना, और ऑनलाइन जो है, और
मेरे साथ हुआ है ये। हम अपने शयन कक्ष में बैठे बैठे अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी कर चुके हैं और लोगों से जुड़ चुके हैं।
जी जी जी,
और यही कारण है शायद प्रचंड जी की और संजोति जी की इंटरनेशनल पैल फॉलोइंग भी हो गई है। तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारे कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विभूतियां जुड़ी हुई है।
इसी कड़ी में मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि साहित्य के क्षेत्र में हमने कुछ कई वरिष्ठ साहित्यकारों को खोया है,
जी,
जो
जी,
हमारे साहित्य के लिए बहुत क्षति है, जिसमें एक अभी अभी मन्नू भंडारी जी, जो हिंदी के साहित्य का एक अध्याय पूर्ण हो गया उनके जाने से, और एक समाज उनके चेहरे को देखता और उनके चेहरे में समाज को देखा और पढ़ा जा सकता था, ऐसी विभूति थी मन्नू भंडारी, जिन्हें हमने खोया। और इसके साथ मैं केवल हिंदी साहित्य की ही बात नहीं करना चाहूंगी, मैं क्या, एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार है श्याम दरिहरे, जो मैथिली साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर हैं थे, उन्होंने भी इस बार संसार से विदा ले ली। और प्रख्यात साहित्यकार, कवि, कहानीकार केएल दीवान, जिनके बारे में बहुत कम सुना गया है, वो हरिद्वार के हैं, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। तो इस तरह हम कई विभूतियों को हमने खोया। और इसी क्षेत्र में हम रक्षा क्षेत्र की बात मैं जनार्दन जी से कहना चाहूंगी कि हमने बहुत बड़ी हस्ती को खोया है, उनके बारे में आप बात करें।
जी 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 और उनके बारे में बात करें तो कम से कम बेंगलोर की भूमि से अजय जी भी परिचित होंगे। गोयनका जी को हमने खोया है बेंगलोर की भूमि से।
गोयनका जी खोया हमने जी, उन्होंने उनके नाम पर अवार्ड चल रहे हैं
जी। तो गोयनका जी का जाना निश्चित ही पूरे भारत के लिए
हमारे लिए
और पूरे दक्षिण भारत के लिए, तो विशेष रूप से जो हिंदी के क्षेत्र में काम करते थे।
हाँ, उन्होंने उन्होंने काफी साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया, काफी सम्मान उन्होंने दिए। और हर वर्ष गोयनका फाउंडेशन तरफ से एक सम्मान दिया जाता था 3-4 साहित्यकारों को अलग अलग भाषाओं में, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ी क्षति है, मतलब हम उनको नमन करते हैं। और इसमें रक्षा क्षेत्र की बात करें तो जनार्दन जी, आपको शायद पता होगा कि ये सीडीएस रावत जी को जो हमने खोया है, मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा आघात है, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो बड़े ही मतलब माहिर रणनीतिज्ञ थे।
जी,
तो
जी,
आपका क्या कहना है?
जी, और जो आप देखिए तो सीडीएस का जो ये पद सृजित किया गया था, इसको इस सृजन को भी ज्यादा समय नहीं हुआ, और इसीलिए किया गया था कि ये पद ऐसा पद था कि जो तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करता था। और सीडीएस रावत जी एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्रों में आप जानते हैं सामरिक स्थिति में कई सेनाओं को समन्वित रूप से कार्य करना पड़ता है, तो और उसके लिए फिर अलग से टास्क फोर्स बनाए गए थे, कुछ सेना की टुकड़ियां बनाई गई थी जो अलग कंडीशंस में, अलग अलग सामरिक कंडीशंस में काम करेंगी। तो वो उस पूरी परियोजना को मुझे लगता है कि सीडीएस रावत जी का जाना उन सबके लिए आघात है।
और जहां तक मुझे पता है, सीडीएस रावत जी ने रक्षा क्षेत्र में कार्य योजना के लिए पीएचडी की हुई थी, और वो सबसे बड़े विश्व के जो है अग्रणी विशेषज्ञ जो है विश्व के, उसमें भारत के एकमात्र हस्ताक्षर थे। तो हमने एक तरह से बहुत बड़ी मतलब विशेषता खो दी है जो सामरिक रणनीति के तौर पर।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समन्वय आसान नहीं होता है, जैसे नौसेना का और थल सेना का समन्वय हो, या नौसेना और वायुसेना का हो, तो समन्वय आसान नहीं होता है, उस कार्य में उनको महारत हासिल थी। तो देखते हैं
कि जब हम किसी पुरस्कार की बात करते हैं जो हमारे भारत वर्ष की किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है।
जी, जी।
वही हम जब किसी के जाने की बात करते हैं तो आंखें भी भर आती हैं। सच तो यह है कि किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती है, सच है, परंतु कई ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने से समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। और इसमें रक्षा क्षेत्र की ही बात करें, जैसे सीडीएस रावत की बात हो गई, या साहित्य में मन्नू भंडारी की बात हो गई, या हम फिल्म क्षेत्र की भी ले लें, तो अभी अभी कन्नड़ फिल्म क्षेत्र से कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की बात करना चाहूंगी, जिनकी आकस्मिक मृत्यु से समाज की बहुत सारी संस्थाएं प्रभावित हुई थी। समाज की कई संस्थाओं का आर्थिक विकास, जो समाज के उन्नति के लिए आवश्यक था, रुक सा गया है, क्योंकि वो इतनी संस्थाओं की सहायता करते थे पर्दे के पीछे रहकर। आज तक ये बात कहीं बाहर आई नहीं थी, उनके जाने के बाद पता चला कि कितने अनाथ आश्रम, कितने विधवा संस्थाएं उनके उनकी सहायता से चलते थे, जो आज डगमगा से गए।
50 से ऊपर संस्थाएं थी ऐसे।
हाँ, तो किसी के मतलब एक तरह से किसी को खोना हमारे समाज की आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक संवेदना हो, मानवीय संवेदना हो, सबको डगमगा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सारी इन लोगों के जाने से हम कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप में प्रभावित ना भी हो, फिर भी प्रभाव तो अवश्य पड़ता है।
हाँ बिल्कुल, जो समाज प्रभावित होता है तो हमें प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और मुझे लगता है कि इससे एक सीख भी मिलनी चाहिए, जो अन्य सेलिब्रिटीज हैं, जो और अन्य सितारे हैं या अन्य पूंजीपति लोग हैं, उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह से पुनीत जी ने इन सारे कार्यों को करके जनता के मध्य किस तरह से स्वयं को एक जननायक के रूप में स्थापित किया था, और किस तरह से हृदय जीत रखा था। तो उन सबके लिए मौका है ऐसे कार्य को करके, सामाजिक कार्य को करके।
जी हाँ, एक उदाहरण के रूप में सामने आए हैं जो बिना बताए काम करते हैं, पर उनके बाद पता चला कि वो कितना काम करते हैं।
लेकिन एक 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 बात इसमें ध्यान देने योग्य है, जैसे पुनीत राजकुमार जी चले गए और सीडी रावत जी चले गए, लेकिन इन्होंने एक हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया है। सीडी रावत जी ने तीनों सेनाओं के समन्वय के लिए एक मार्ग खोल दिया कि मैंने ये मार्ग तय कर दिया, आप इस मार्ग को आप आगे लेके जाओ। पुनीत राजकुमार जी ने एक ज्योति जला दी है, उन्होंने बोला कि मैंने मार्ग दिखाया है, मैंने संस्थाओं खड़ा किया है, आप इसको आप आगे लेके जाओ। हमें उनके सपने को ही रोक नहीं देना, इसको आगे लेके चलना है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तभी उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, ये मेरा मानना है।
बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल सहमति की बात है।
मैं चार पंक्तियां कहना चाहूंगी, जब हम क्या खोया क्या पाया की बात करते हैं, यदि जनार्दन जी और अजय जी मुझे अनुमति दे तो।
अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप आ, 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 आपको नाराज करके हम कहां जाएंगे।
देखिए हम आज बात कर रहे हैं क्या खोया क्या पाया, सारे साल भर का जो हमें उन्हें याद कर करके हम कह रहे हैं, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा, क्या क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया कि कैसी है यह दौड़, पाने की जो होड़, पाने की जो होड़ उसमें खोया सो खोया, खोया सो खोया, पर जो पाया वह भी खोया, बस बाकी रहा यादों का जोड़, बस बाकी रहा यादों का जोड़।
मैं तो इतना जानता हूँ 2021 में मैंने क्या खोया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज दो महान विभूतियों से ज्ञान जरूर पाया। मैंने जनार्दन जी को सुना है, उनके ओज को सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे हम राष्ट्रवाद की आग जल पड़ती है, और स्वर्ण ज्योति को सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे ज्ञान की गंगा बहती है। तो ये मैंने पाया है आज। तो इसी मोड़ पर हम अपने कार्यक्रम को समाप्त की ओर लेके जाएं।
जी जी
जी
आप कुछ जोड़ना चाहेंगे स्वर्ण ज्योति जी, जनार्दन जी आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे?
मैं खाली एक बिंदु और जोड़ना चाहूंगा महत्वपूर्ण। मुझे लगता है कि इन सबको खोने के बाद, जब खोने की बात आ रही है, तो हमने कई क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति का मौका भी खोया है, क्योंकि जब कोरोना की विभीषिका आई थी तो पूरी दुनिया एक चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में हमारी ओर देख रही थी, और सभी लोग लालायित थे भारत के उत्पादों को आयातित करने के लिए, चाइना से जो है छुटकारा पाना चाह रहे थे। तो शायद उस मौके को हम उस तरह से नहीं भुना पाए जैसा हमें भुना जाना चाहिए था, एक वो भी पक्ष हमने खोया है।
मुझे लगता है हम उसमें आधे आर्थिक आंशिक रूप से सफल हुए हैं।
हाँ बिल्कुल, जो दुनिया की उम्मीद थी, दुनिया चाह रही थी,
सफल नहीं हुए,
उतना सफल नहीं हो पाया।
अच्छा चलिए, आप दोनों का चुभन से
दो पंक्तियों से करना चाहूंगी मेरी
जी
बात
जी जी जी।
वर्तमान परिदृश्य के प्रेक्षण से, वर्तमान परिदृश्य के प्रेक्षण से खुलती हैं व्यापक राहें, जिनसे गुजरे बिना शुरुआत होती है, होता है असंभव।
वाह वाह क्या बात है,
बहुत सारी बातें। और अपनी बात को मैं विराम देती हूँ।
ये बहुत सुखद एहसास है कि 2022 में हम दो महान विभूतियों के उपदेश के साथ हम पदार्पण कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि 2021 में क्या खोया क्या पाया वो तो एक चर्चा हो गई, लेकिन 2022 में हम जरूर नए आयाम तय करेंगे। आइए हम सभी 2022 में पदार्पण करें, सभी श्रोताओं को एवं सभी साथियों को 2022 के नववर्ष की नई नई शुभकामनाएं। उम्मीद है ईश्वर सबके लिए नई मुस्कान लेकर आएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।
धन्यवाद
धन्यवाद,
थैंक यू।